وآتينا موسى الكتاب اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. اب یہاں سے تھوڑا سا قصہ بنی اسرائیل کا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد اب ان کی تو قیادت سیادت ختم ہو گئی، اب وہ امامت کے منصب سے ہٹا دیے گئے، اب وہ دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر جانے والے نہیں رہے، اب یہ منصب امت مسلمہ کو ملا. تو لہٰذا اب بنی اسرائیل کی طرف بات کا رخ موڑ دیا گیا. اس سے ایک تو مشرقین مکہ کو بھی بتانا اور یہود مدینہ جن سے ابھی انڈائریکٹلی واسطہ پڑا تھا ان کو بھی ایک بات سمجھا دینی کہ اب یہ نبی ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی، ان کے پاس بھی تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت کا ذریعہ کس کے لیے؟ لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. هُدًى لِلْعَالَمِينَ نہیں، هُدًى لِلنَّاس نہیں، بلکہ یہاں پہ کیا کہا گیا؟ هُدًى لِبَنِي اسرائیل. اس سے ہمیں بہت اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی اور جو تورات تھی اس کو بنی اسرائیل کے لیے اسپیسیفک ہدایت کا ذریعہ بنایا، پوری انسانیت کے لیے نہیں بنایا. کرسچنز جو ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں پورے انسانوں تک اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو انسانیت تک ہمارا دین پہنچنا چاہیے اس کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ ان کا دین سب کے لیے ہے ہی نہیں، ان کا دین صرف وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، یہودی اتنی زیادہ نہیں کرتے تبلیغ، وہ یہودی بن نہیں سکتا کوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں صرف. تو یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سب بنی اسرائیل کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود فرمایا بھی، ان کا بھی فرمان بھی ہے کہ میں بنی اسرائیل کے لیے آیا، یہ قرآن میں بھی ہے اس کی دلیل. تو اور تورات بھی صرف ان کے لیے، جبکہ قرآن کریم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ قرآن میں خود آیا ہے هُدًى لِلنَّاس، ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت یہ کتاب ہے، رہتی دنیا تک، کیونکہ ناس تو قیامت تک رہیں گے نا. اور یہاں پہ کہا گیا تورات میں بھی کیا تھا؟ جو ہدایت تھی، جو رہنمائی کرتی تھی بنی اسرائیل کی، کیا کہا گیا تھا اس میں؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ تم بناؤ میرے سوا کسی کو بھی وکیل. وکیل مطلب کارساز، جس پہ انسان بھروسہ کرتا ہے. یار یہ ایک بہت توحید کا بہت پاورفل پہلو ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرے، اس کے اوپر بھروسہ کرے. یہ ایک پوائنٹ ہے جو انبیاء کی دعوت کا ایک بہت بیسک پرنسپل، بیسک ایک نقطہ تھا، بیسک پوائنٹ تھا کہ کسی اور کو بھی مشکل کشا، کرنی دھرنی والا، مسئلوں کا حل کرنے والا کسی اور کو نہ سمجھا جائے. وکیل صرف اللہ ہے، اور وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس انسان اپنا کیس دے کر اور پھر بے فکر ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ وکیل اللہ کو بناؤ، یعنی توکل اللہ پہ کرو، بھروسہ اللہ پہ کرو. تو اب مسلمانوں کو بھی ایک یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہودیوں کو بھی یہی کہا گیا تھا، ان کی کتاب میں بھی یہی تھا. جتنی بھی مخالفت ہو، جتنے بھی مسائل ہو، جتنی بھی دشمنیاں ہوں، تم نے بھی اپنا بھروسہ اللہ پہ ہی رکھنا ہے کہ وہ سارے کام بنانے والا ہے. میں اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہوں، اس پہ بھروسہ کر کے وہ سب معاملات کو صحیح کرنے والا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی انسان کے ایمان کی بات ہے کہ اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہو، اللہ کے حوالے کرنا جانتا ہو وہ کاموں کو. یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کسی انسان کے اندر یہ بات یقین کی حد تک ہو کہ اللہ تعالیٰ سب پاور رکھتا ہے، تبھی تو آپ بھروسہ کریں گے نا. आप देखिए, कोई काम हो, आप अपने मिसाल के तौर पे घर को किसी पे छोड़ के जा रही हैं, बच्चे पे तो नहीं छोड़ के जाती ना कि कोई बच्चा है, अच्छा तू मेरे घर का ध्यान रखना। पता है इसके पास क्या ताकत है, ना अकल है, ना समझ है, ना ताकत है, ये क्या संभालेगा? आप किसी अकलमंद को, किसी सिक्योरिटी गार्ड, किसी उसको उसको कैसे उसको कह के बैठती हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट करती हैं। आप सोचें अपने जिंदगी के मामलात, इसमें वो ही अल्लाह पे भरोसा करेगा जो जानता होगा कि वो पावरफुल है। जैसे आप दुनिया में मामलात में आपने देखे उसको दिया ना आपने अपना काम जिम्मे, जिसको आपने पावरफुल समझा, आपने बच्चे को नहीं दिया। इसी तरह अल्लाह पे भरोसा करना ये है कि जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह ताला मेरे मामलात को ठीक कर सकता है, वो कुदरत रखता है, उसके पास पावर है, उसके पास हिकमत है, उसके पास इल्म है, वो इतनी ताकत रखता है, तो वो ही अल्लाह ताला के हवाले करेगा अपने काम। और जो ये नहीं यकीन रखता, बस सिर्फ जुबानी कलामी कहता है हसबी अल्लाह व नेमल वकील, लेकिन उसके दिल में यकीन नहीं है कि अल्लाह के पास तो सारी ताकत है, तो फिर वो इंसान जुबान से तो बोलता है, जुबानी कलामी तो कहता है, मगर वो अपने मामलात कभी भी अल्लाह के सुपुर्द करके और मुतमईन नहीं हो पाता, उसके अंदर यकीन नहीं है ना। तो जब यकीन आए ना, ये यकीन बड़ा जरूरी है, यही यकीन अल्लाह ताला ने दिलाया है कि यकीन कर लो कि मेरे सिवाय कोई वकील नहीं, और तुम मेरे सिवा किसी को पर ना भरोसा करना। फिर भी इंसान ये सुन के भी, उनको भी ये कहा गया था, हमें भी यही कहा गया, फिर भी वो ये सुन के और हसबी अल्लाह व नेमल वकील की तस्बीहात करके भी फिर उसके बाद आस्तानों पे जाता है, मिजारों पे जाता है, कब्रों पे झुकता है, उसको मुश्किल कशा, उसको हाजत रवा, वो मेरा माई बाप, वो मेरा करने वाला, वो गौस, वो दाता, फिर उनको बनाता है, क्योंकि उसके अंदर यकीन नहीं है कि अल्लाह वकील है, वही मेरा वकील है, वही मेरे सारे मुकदमों को हल करने वाला है। तो वकील वो होता है जिसको इंसान मददगार समझ के अपने मामलात उसके सुपुर्द करते हैं, अपने मामलात का उसको मुख्तार समझता है, उसके पास अथॉरिटी समझता है। तो ये बातों की हद तक नहीं होता, ये असल में यकीन का नाम है, तवक्कल, ठीक है, कि मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा, मुझे उसकी कुदरत पे यकीन है, मुझे उसकी ताकत पे यकीन है। जुर्रियता मन हमल नमानू, औलाद जिनको सवार किया हमने नूह अलैह सलाम के साथ, असल में यहाँ पे या महजूफ है, या जुर्रियता में या हजफ हुआ हुआ है, तो या मतलब ए औलाद, यानी बनी इसराइल की तरफ इशारा है कि औलाद जिसको हमने नूह अलैहि सलाम के साथ सवार किया था, तो इनको तो नहीं सवार किया हुआ था, वो तो नूह अलैहि सलाम के जमाने के लोग थे जो उनके साथ ईमान वाले थे। फिर बनी इसराइल को क्यों कहा गया कि ए औलाद जिनको उस वो औलाद जिस उनकी औलाद जिनको हमने नूह अलैहि सलाम के साथ सवार किया कश्ती में, इसलिए कि जो नूह अलैहि सलाम के साथ सवार हुए थे उन्हीं की औलाद से आगे फिर दुनिया चली थी, इसीलिए नूह अलैहि सलाम को आदमे सानी कहते हैं, उस कश्ती में जो थे बस वो ही सरवाइव किए और उनसे दुनिया चली, इसके अलावा सारी दुनिया गर्क हो गई। तो नूह अलैहि सलाम के तीन बेटे थे, हाम, साम और याफिस। बस तफासीर में आता है कि साम से ही इब्राहिम अलैहि सलाम और उन्हीं से फिर ये यहूदी, ईसाई और ये जितने भी मिडल ईस्टर्न सारे हैं, ये सब उन्हीं की नस्ल से हैं, और इसीलिए इनको सेमेटिक रिलीजन्स कहा जाता है, साम से, सामी अदियान, ठीक है, क्योंकि अरब और ये सब उन्हीं से हैं। और जो हाम है उनसे ये अफ्रीकन लोग, काले लोग, ये उनसे हैं, और जो याफिस है उनसे ये जितने ये चीनी, जापानी, तुर्क नस्ल के, फिर ये मलेशियन, इंडोनेशियन, ये अलग 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 हुलिये वाले लोग ये याफिस से हैं। इनमें इख्तलाफ भी है, लेकिन ये बेसिक में एक ये बताया जाता है। तो कहा गया कि तुम तो उनकी औलाद हो, नूह अलैहि सलाम के साथ जो ईमान वाले थे उनकी, जिनको हमने नूह अलैहि सलाम के साथ सवार किया था। तो तुम कौन हो और देखो कि तुम क्या कर रहे हो। नूह वो कौन थे? इन्नहु काना अब्दन शकूरा। नूह अलैहि सलाम की जो सिफत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, उनकी तमाम सिफात में से वो सबसे बड़ी सिफत एक क्या है, वो अब्दन शकूरा थे। अब्द थे एक तो बंदे अल्लाह के, और फिर दूसरे कैसे बंदे, शुक्र गुजार बंदे। अल्लाह अकबर, बहुत ज्यादा कुछ हमने शुक्र गुजारी के मुतल्लिक इसमें सूरह नहल में पढ़ा है, पिछली सूरत में। और शुक्र गुजारी, हमने ये बात की थी कि शुक्र गुजारी ये नहीं है कि जब मुझे बहुत कुछ मिलेगा तो मैं शुक्र गुजारूंगी। शुक्र गुजारी ये है कि इंसान के पास जो कुछ भी है उसमें ही वो इस चीज पर अल्लाह ताला का मशकूर रहे, कदरदान रहे कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा कुछ अता फरमाया। वरना इंसान अगर इस इंतजार में रहेगा कि जब मुझे सब कुछ मिल जाएगा तब मैं शुक्र गुजारूंगी, या ये मिलेगा तो मैं शुक्र अदा करूंगी, तो कभी एक चीज होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो तीसरी नहीं होगी, या कभी बहुत सारी चीजें भी मिल जाए तो कोई एक चीज की तो कभी कमी रह ही जाएगी। इंसान फिर हमेशा नाशुक्रा ही रहता है। नूह अलैहि सलाम वो जिन्होंने कितनी मुश्किलें काटी, आसान नहीं है उनकी लाइफ, अगर उनकी लाइफ को पढ़ें बहुत मुश्किल है। सूरह नूह में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, लेकिन इस सारी स्ट्रगल के बावजूद, फुल ऑफ स्ट्रगल, और फिर एक दो दिन की स्ट्रगल नहीं, 950 साल की स्ट्रगल कोई आसान है? इसके बावजूद नाशुक्री नहीं है, इसके बावजूद मायूसी नहीं, इसके बावजूद ये कहना कि हाय मुझे क्या मिला, हाय 950 साल के बाद 80 लोग सिर्फ उनके हाथ पे मुसलमान हुए, अल्लाह हु अकबर। लेकिन कहीं आप नहीं देखते कि नाशुक्री के कलिमात, बल्कि उनके बारे में आता है तफसीरे तबरी में है कि जब कपड़े पहनते थे या खाना खाते थे तो अल्लाह ताला की हम्द बयान करते थे, इसी वजह से उनको अब्द शकूर कहा गया। हम नाम तो रख लेते हैं लेकिन अब्द शकूर कितने लोग। और अल्लाह ताला ने नूह अलैहि सलाम को इसलिए भी कहा कि जब वो खाना खाते थे तो दुआ करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे खाना खिलाया, अगर वो चाहता तो मुझे भूखा रखता, जब लिबास पहनते तब भी कहते अल्हम्दुलिल्लाह जिसने मुझे लिबास पहना रखा, अगर वो चाहता तो मुझे नंगा रखता, जूता पहनते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह जिसने मुझे जूता पहनाया, अगर वो चाहता तो मुझे नंगे पैर रखता, कजाए हाजत करते तो दुआ करते अल्हम्दुलिल्लाह जिसने मुझसे ये घिन वाली चीज दूर की, अगर वो चाहता तो इसको रोक लेता। और हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह की दुआएं सिखाई हुई, ऐसी दुआ हमें खाना खाने की भी है, लिबास पहनने की भी है, हमारे लिए कजाए हाजत के बाद की भी है, लेकिन हम शुक्र गुजार नहीं बनते, हम इन दुआओं की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं करते। और खाने की अल्लाह ताला लज्जत चखाता है, अल्लाह ताला सेहत देता है, अल्लाह ताला जिस्म को बाकी रखता है, नहीं, बेशुमार नेमते हैं जो एक एक चीज के साथ जुड़ी हुई है। ये खाने खाने को ही आप देख लें तो बेशुमार उसके अंदर आपको अल्लाह ताला की करम नवाजी और उसका फजल नजर आएगा। इसके बाद इंसान को सिवाय शुक्र गुजारी के और कुछ नहीं बोलना चाहिए, मगर फिर भी हम कहते हैं ये कैसा खाना है, वो कैसा ये है, इसमें नमक ज्यादा, इसमें मिर्च ज्यादा, इस ये तो बिल्कुल बेकार, ये क्या बना लिया। तो नूह अलैहि सलाम की मिसाल देकर बताया गया वो तो अब्दन शकूरा थे, और बनी इसराइल को समझाया गया देखो जिनकी तुम औलाद हो ना वो तो शुक्र गुजार बंदे थे, और तुम शुक्र गुजारी की बजाय नाफरमानी करते हो। शुक्र गुजारी में तो फरमा बरदारी होनी चाहिए ना। मैंने आपको बताया था अमली शुक्र क्या है, अल्लाह ताला की इताअत है, लेकिन तुम ना शुक्रिया करते हो। तो इंसान को, उसी इंसान को अल्लाह ताला नवाजता है मजीद नेमतों से जो शुक्र गुजार बंदा होता है। और अंबिया सब के सब शुक्र अदा करने वाले थे, फिर तुम कैसे नाशुक्रे बन सकते हो? अगर तुम अंबिया के नक्शे कदम पे चलना चाहते हो तो शुक्र गुजारी अख्तियार करो। फिर फरमाया वा कदईना, कजा कहते हैं, कजा के बाद इला आ जाए ना तो किसी को कुछ बताना, कदईना इला आया ना तो बताना, तो आगाह कर दिया था, बता दिया था हमने बनी इसराइल को क्या, फिल किताब, किताब में, कौन सी किताब में, तौरात में। तो रात में हमने उनको बता दिया था कि लतुफ सी दुन्ना फिल अर्थ, कि तुम जरूर फसाद करोगे जमीन में मर्रतैन, दो दफा, वला तअलुन्ना उलुवन कबीरा, और अलबत्ता तुम जरूर बुलंदी पकड़ोगे, बुलंदी बड़ी। ये उनको बता दिया गया था उनकी किताब में कि आपके साथ ये होना ही होना है मुस्तकबिल की, यानी उनको बात उनकी किताब में ये वाजे कर दी गई थी। और फसाद, क्या फसाद, फसाद का मतलब क्या है, बिगाड़ का मतलब क्या है, यानी तुम दीन में बिगाड़ होगा तुम्हारे, तुम्हारा दीन ऐसे, दीन के को जाया करोगे, दीनी अहकाम को पसे पुश डालोगे, तुमको समझोगे नहीं दीन की बातों को, जो तुम्हें बताने वाले हैं उनको भी कत्ल किया इन्होंने, यानी रसूलों को कत्ल किया, एक एक दिन में कई नबियों को कत्ल करने वाले थे, मुखालफत करने वाले थे उनकी, गुनाहों की कसरत, ये सब चीजें। तो तुम ये जुल्म और ज्यादतियां करोगे, और इसी तरह अल्लाह ताला फिर तुम्हें, और तुम सरकशी करोगे, बड़ी सरकशी, लुवन कबीरा, सरकशी भी तुम्हारी तरफ से होगी। तो ये, इसको अगर तारीख में देखा जाए तो वाकई इन्होंने ऐसा किया कि अल्लाह के हक को जाया किया, और दो दफा इनके ऊपर सख्त सजाएं आईं। और इसका जिक्र यहां पर आ रहा है आगे, तो हमें क्यों ये बात बताई गई, हमें क्यों ये कहा गया? इसलिए कि आपको मस्जिद अल अक्सा से बता दिया गया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मस्जिद अक्सा ले जाया गया तो ये एक चीज की निशानी थी कि अब ये जो इमामत का फरीजा ये उनसे लेकर और उम्मते मुस्लिमा को दे दिया गया। इसके बाद इनकी कुछ बातें बताई गई और उनसे उम्मते मुस्लिमा को समझाया गया कि देखो तुमसे पहले भी एक उम्मते मुस्लिमा थी और वो बनी इसराइल थी, और उन्होंने क्या किया, उनकी तारीख 2000 साल की उनकी तारीख है, उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, वो समझो ताकि तुम वो काम करने से बचो। लेकिन हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक पेशीन गोई की है, फरमाया मेरी उम्मत पे भी वो तमाम हालात आएंगे जो बनी इसराइल पे आए थे, और बिल्कुल ऐसे जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाबे होती है, यानी जूतियों को आप देख लें ना, पीछे से मिलाएं तो दोनों बिल्कुल एक जैसी होती, कोई फर्क नहीं होता, ये भी यही करेंगे। जबकि अल्लाह ताला ने साफ वाजे तौर पे बता दिया हुआ है कि उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, वो किस तरह बिगड़े, और उन्होंने सरकशी की बड़े पैमाने पर, ये तौरात में उनको बताया गया था, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आए। और फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, अब इसकी ये क्या हुआ था ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, पहले हम इस आगे की आयात को देख लेते हैं, तो फिर आपको बताती हूँ कि कैसे, जब पहली इन्होंने सरकशी की तो इनके साथ क्या हुआ, फिर दूसरी की तो क्या हुआ, दो दफा की थी ना, तो फ़ाइज़ा जाअ वादु उलाहुमा, फिर जब आ गया वादा उन दोनों में से पहले का, यानी पहला फसाद, तो बताया गया ना लतुफ़ सी दुन्ना फिल अर्दी मर्रतैन, दो दफा, तो पहला जब इन्होंने फसाद किया, दीनी बिगाड़ इनके अंदर आया, बासना अलैकुम इबाद लना, हमने भेजा तुम पर अपने बंदों में से, जो हमारे बंदे हैं उनमें से। आप नोट करिएगा, इबादु ना नहीं कहा गया। जैसे आप देखें शुरू के अंदर क्या आया, भी आबदी ही, अपने बंदे को, और यहाँ पे इबादना भी कहा जा सकता था, लेकिन इबादल लाना, इनके साथ अपनी निस्बत जोड़ी नहीं अल्लाह ताला ने। क्योंकि जो लोग मुसल्लत भी हुए वो अल्लाह का अजाब थे इनके ऊपर, वो अल्लाह ताला के एक तरह से कारिंदों की हैसियत से उन पे मुसल्लत हुए। ये नहीं कि अल्लाह के कोई बड़े प्यारे महबूब बंदे थे, वो अल्लाह के अजाब की एक सूरत थे। ऐसा नहीं कि अल्लाह को वो बड़े पसंद थे। जैसे हिटलर ने कहा था कि मुझे ख्वाब आया, गॉड ने मुझे ये ख्वाब में कहा है कि मैं यहूदियों के साथ ऐसा करूं। वो टाइम टू टाइम अजाब के कोड़े बरसते रहे। और ये नहीं कि वो लोग जिनके जरिए अजाब आया वो अल्लाह ताला के बड़े पसंदीदा कोई चुने हुए बंदे थे, ऐसे नहीं है। तो वो इबाद अल्लाह ना थे। उली बासिन शदीद, सख्त जोरावर, फजासू खिलाल दियार, तो वो घुस गए घरों के अंदर, वकाना वाद मफूला, और ये वादा एक पूरा होने वाला था। ये कौन सा वादा? ये पहला वादा, दो वादे थे ना, और ये पहला वादा पूरा हो गया। यानी जब जब भी तुम फसाद करोगे तुम्हारे पर तबाही आएगी, और दो दफा तुम करोगे। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद करवाना चाहती हूँ। आपको याद होगा मूसा अलैहि सलाम की आपने कहानी सूरह बकरा में बड़ी तफसील से पढ़ी है। और जब मूसा अलैहि सलाम मैदाने ती में 40 साल ये लोग सरगर्दां रहे, भटकते रहे, उनको रास्ता नहीं मिलता था, और वो इसी वजह से कि जब इनको कहा गया था फलस्तीन का फतह करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मूसा तू और तेरा रब जाके लड़, हमसे तो नहीं लड़ा जाता, हम तो यहीं बैठे। इनको ये सजा मिली 40 साल उसी मैदान में, ये जिधर से सुबह करते थे शाम को वहीं पहुंच जाते थे। फिर उसके बाद मूसा अलैहि सलाम भी फौत हो गए, हारून अलैहि सलाम भी फौत हो गए, फिर यूशा बिन नून की क्यादत में, उनकी लीडरशिप में इन लोगों ने फलस्तीन को फतह किया। अब आपको जैसे पता है ये 12 कबीले थे। अब बजाय इसके कि ये एक हुकूमत कायम करते और सब उसके अंडर रहते, इन्होंने 12 हुकूमतें कायम कर ली। 12 कबीले तो 12 हुकूमतें। हम फिर जाहिर है अपनी स्ट्रेंथ तो खुद ही कम हो जाएगी ना, जब बट जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। अब इन्होंने अपने अपने इलाके तो ले लिए, लेकिन आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया, आपस में ही जंगें शुरू कर दी। इन आपस की लड़ाइयों की वजह से जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी आ गई। और इसके अलावा ये तौरात को छोड़ बैठे, उसको के अहकामात को छोड़ दिया। जो चुनी भी कौम थी, जो ऐसी उम्मत थी जिसके पास आसमानी किताब आई हुई थी, ऐसी कोई भी उम्मत जब बिगाड़ का शिकार होती है और पैगाम को भुला देती है, तो फिर जाहिर है उनके अंदर जवाल आता है, बिगाड़ आता है। जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने इनको चुना था वो सब भूल गए। हमें भी समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह की किताब को हम भी छोड़ेंगे और भूलेंगे, हमारे अंदर भी बिगाड़ आएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्यों आज मुसलमान ऐसे हैं, क्यों आज ये ऐसे हैं, क्यों हमारे पर जवाल है। इसकी वजह अगर आपने जाननी है तो आप पिछली कौमों से सबक ले सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे पर बिगाड़ और जवाल और ये सब आ रहा है, तो छोड़ो इस्लाम को छोड़ दो ताकि हमारे पर ये मुसीबतें खत्म हो। हम इस्लाम को छोड़ेंगे तो मुसीबतें खत्म होंगी, इसलिए वो अपने नाम बदल देते हैं, कोई दीन से फिर जाते हैं, कोई कुछ करते हैं। हालांकि कितनी नादानी, कितनी बेवकूफी है कि इसके से दूर होने की वजह से तुम्हारे पर यह जवाल आया हुआ है, अपने दीन को छोड़ने की वजह से आया हुआ, अपनी किताब से दूर होने की वजह से आया। और हम सोचते हैं कि इस नाम मुसलमान होने की वजह से हमारे ऊपर ये मसले हैं। जब तुम अल्लाह की किताब के साथ ये सलूक करोगे तो देख लो फिर पिछली कौमों के साथ क्या हुआ, फसाद का शिकार हुए, सरकशी में पड़ गए। तो उन्होंने जब वो इस बिगाड़ का शिकार हुए, फसाद में पड़े, तो उनके इर्द गिर्द की कौमों ने उनके ऊपर हमले किए और उनको जेर कर दिया, इनको घरों से निकाला, इनके बच्चों को कत्ल वारत किया। फिर आप सूरह बकरा में वो तालूत जालूत का किस्सा पढ़ते हैं, तालूत को बादशाह बनाया गया, फिर उसकी सरकर्दगी में दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। फिर उसके बाद इनका बड़ा गोल्डन पीरियड आया, तकरीबन 100 साल का था, जिसमें तालूत ने हुकूमत की, दाऊद अलैहिस्सलाम ने की, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। ये लोग अपने आप को इन्होंने ठीक किया था, क्योंकि ये सारे मिलके सूरह बकरा में आता है ना, जहाँ पे दूसरा पारा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ये आता है, तालूत और जालूत का किस्सा आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं जाके। तो इन्होंने कहा अपने नबी से, वादा किया कि आप हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दें, हम उसको साथ लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ऐसे करेंगे। खैर उन्होंने लड़ाई की और फिर फतह हासिल की, और ये इनका गोल्डन पीरियड जिसको ये किंग्स पीरियड कहते हैं, और स्टार ऑफ डेविड, और बड़ा इस पे फख्र करते हैं। जैसे हमारे अंदर खिलाफते राशिदा थी ना, बहुत गोल्डन पीरियड था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, इसी तरह इनके लिए ये एक बहुत गोल्डन पीरियड था मूसा अलैहि सलाम के बाद। अब जब सुलेमान अलैहि सलाम की वफात हुई तो तब ये फिर दो हिस्सों में बट गए, एक शमाली रियासत और एक जनूबी रियासत। एक का जो कैपिटल था यरूशलम था, दूसरा का सामरिया। फिर इन दोनों रियासतों में भी बट के ये फिर से वही सरकशी, फिर से बगावत, फिर से नबियों की तालीमात से दूर, और फिर इनके इतना जवाल था कि नबियों को कत्ल करना, उनकी बात को नहीं सुनना, तो अल्लाह ताला ने इन पे फिर तबाही मुसल्लत की। इसको कहते हैं पहला वादे का वक्त, कि क्या हुआ था कि बुख्त नसर जो बेबलोनियन एक इराक से आया हुआ था एक बादशाह, उसने इनके ऊपर हमला किया, उसने तो वो हाल किया इनका ना, यानी तहस नहस करके रख दिया। आप सोचें कि ये जो इलाका था बैतुल मकदस का, ये हैकले सुलेमानी था, उसको तबाह कर दिया। यानी आपकी जो बहुत सेंचुरी की जगह होती है ना, जो जिनको आप बहुत मुकद्दस मकामात जिनको आप कहते हैं, उन आपके मकामात को कोई मैली आंख से भी देखता है तो तकलीफ होती है। आज कोई काबा के बारे में कोई बात कर दे तो सारे मुसलमान तकलीफ में आ जाएं। आप सोचें कि बैतुल मकदस, जहां जो इनका किबला काबा सब कुछ, उसको दुश्मन ने वो हाल किया कि उसके अंदर घुस गए, उसकी इतनी बेहुर्मती की, उसकी तोड़ फोड़ कर दी, तो रात को खत्म कर दिया इनको, इतना जलील किया कि 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया उसने, 6 लाख को जानवरों की तरह हांकता हुआ वो अपने मुल्क लेके गया, कैदी बना लिया मर्दों औरतों को इनको सबको। देख लें, एक मजूसी था वो, एक काफिर था, और ये कौन थे बताएं, ये उस वक्त की उम्मत मुस्लिमा थे। ये नहीं कि अल्लाह को वो पसंद था, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इबाद अल्लाह, ना अल्लाह के लश्कर हैं, लश्करों को अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया। जो उली बासिन थे, बास यानी कुव्वत वाले, जोर वाले, बहुत जंगजू थे वो, अल्लाह ताला ने क्यों उनको मुसल्लत की, जबकि जैसे आज हम कहते हैं ना, हम तो मुसलमान हैं, हमारे ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है, हाय हम तो मुसलमान, हम तो अल्लाह तेरा नाम ले रहे हैं, हम तो ये हैं, ये काफिर हमारे ऊपर चढ़ दौड़ रहे। तो ये पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी तारीख में ऐसा हुआ है। सबक सीखे इनसे कि ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काबातुल्ला जो अल्लाह का घर है, इसकी जिम्मेदारी खुद ली है कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, तो आज ये महफूज है, और किसी काफरों का इस पे कभी गलबा नहीं हो सकता। जैसे कि अल्लाह ताला ने फील वालों को, असहाबुल फील को अल्लाह ने खत्म कर दिया था, तो वहां पे तो कोई, वरना हमारे से तो वो भी संभलना नहीं था, ऐसे नहीं कि हमारी कोई बड़ी ताकत है। लेकिन बैतुल मकदस जो है ना, इसकी अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं ली हिफाजत की। और इसलिए आप देखें तारीख के अंदर कि इस घर अल्लाह के इस घर के साथ क्या क्या हुआ। तो अल्लाह ताला का कानून दोनों के मुतालिक अलग अलग है ना, इसलिए वहां पे कुफार का गलबा हुआ। और आप देखें कि उसकी जो ईंट से ईंट ऐसी उसने बजाई कि कहा जाता है तारीख में कि दो ईंटें भी एक जगह पे जुड़ी भी नहीं उसने छोड़ी थी, इतनी हालत कर दी थी। और ये कब हुआ? 586 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी 586 साल पहले ईसा अलैहि सलाम के दुनिया में आने से। अब ये तबाही बहुत शदीद थी, बहुत शदीद थी, और अल्लाह का वादा पूरा हुआ। यानी जब तुम इस तरह की हरकत करोगे, जब तुम अपने दीन से दूरी करोगे तो यही होगा। और आप सोचें कि ये बैतुल मकदस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक बड़ी अजीमुल कदर मस्जिद है, दुनिया के सब घरों में एक अजमत वाला घर है, जिसको अल्लाह ताला ने सुलेमान बिन दाऊद के लिए सोने चांदी और जवाहरात और याकूत और जुमरद से बनाया था। और आपको पता है कि इसकी तामीर में जिन्नात ने हिस्सा लिया था। ऐसी जगह को पामाल हो जाना, ऐसी जगह की बेहुरमती हो जाना कितनी तकलीफ दे बात है। लेकिन जब बनी इसराइल ने नाफरमानी की, गुनाहों में, बदअमालियों में मुब्तला हुए, इन्होंने बड़े बड़े जराइम किए, छोटे नहीं किए। नबियों को कत्ल करना छोटा जुर्म नहीं है। तो अल्लाह ताला ने देखो काफिर से इनको पिटवाया, और 700 साल तक उसने बैतुल मकदस पे हुकूमत की। फिर उसके बाद एक बादशाह था, साइरस उसका नाम कहा जाता है। बाज कहते हैं वही जुल्करनैन था, बाज कहते हैं वो ये था जो एलेक्जेंडर था। तो उसको सिकंदर जिसको कहते हैं वो आया, बाज यानी डिफरेंट डिफरेंट बातें लिखी गई हैं, मगर बाहर कैफा एक बादशाह आया, उसने यहाँ पे हमला किया इराक पे। फिर उसको इनके ऊपर रहम आ गया, उसने कहा इनको छोड़ दिया कि जाओ तुम जाके अपनी आबाद करो अपनी बस्ती। तब ये आए यहाँ पे बैतुल मकदस, तो देखें वैसे ही वीरान था ये। वो वाकया है जब सूरह बकरा में आपने उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा है ना, उन्होंने देख के बस्ती को उल्टी हुई देखा तो कहा था ये कैसे कभी जिंदा हो सकती है। अल्लाह हू अकबर।